हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 6 श्लोक संख्या 23, 24, 25, 26 एंड 27। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सत्त्वोद्भवस्था न निरोधलीलया गृहीतशक्ति त्रितयाय देहिना अन्तर्भवाय नुपलक्ष्यवर्तमे। नमो नमस्ते वृषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठा यमुः कुयोगिनां निरस्तसाम्या दिशयेन राधसा स्वधामनि ब्र मणिरंस्य ते नमः। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सत्यो विदुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरातहूण द्रपुलिन्दपुल्कषा आबीरशुम्भा यवनाखसादय येने च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। प्रचोदिताये न पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुरभूत् किलास्यत समीरिषीणां ऋषभ प्रसीदताम् भूतैर्महद्भिर्यैमां पुरो विभो निर्माय शीति यदमूषु पुरुष भुङ्क्ते गुणांशो दशषोडशात्मका सोलं कृषीष्ट भगवान् वचांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय विधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। दूसरा स्कंद अध्याय छे जिसका शीर्षक है पुरुष सूक्त की पुष्टि। आज ब्रह्मा जी नारद मुनि को ये बताते हैं कि जब वो भगवान की नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे और भगवान ने उनको यज्ञ करने का आदेश दिया था उस समय उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो सारी की सारी सामग्री उन्होंने भगवान से ही भगवान के अंगों से ही प्राप्त की। तो बहुत ही सुंदर रीति से आज ब्रह्मा जी सृष्टि के आरंभ में क्या हुआ था वो हमें बताएंगे। श्लोक नंबर 23। कृपया मेरे साथ साथ इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों का उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। ब्रह्मा जी नारद मुनि को कहते हैं, यदास्य नाभ्यान्नलीना अहमासं महात्मनः नाविदं यज्ञसंभारा पुरुषा वयवान् ऋते यदास्य नाभ्यान्नालीनात् अहमासं महात्मनः नाविदं यज्ञसंभारान् पुरुषा वयवान् ऋते। यदा स नाभ्या नलिनात्, यदा अस्य मतलब जब, यदा मना जब, अस्य मतलब उनकी, नाभ्यात मतलब नाभि से, नलिनात मतलब कमल के फूल से, अहम आसम, अहम मना मैंने, आसम मना जन्म लिया था, महात्मना मतलब महापुरुष भगवान गर्भोदशा विष्णु के नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे। नाविदम यज्ञ संभारान, न अविदम मतलब तब, न मना नहीं, अविदम मतलब जाना, कुछ था नहीं, यज्ञ संभारम यज्ञ की संभारा मतलब सामग्री। फिर पुरुषा वयवान ऋते, पुरुष भगवान के अवयवान मतलब शरीर के अंगों से, ऋते यानी उनके अलावा। अब भगवान ने केवल ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और तो कोई वस्तुएं थी नहीं ना, तो फिर वो सारी वस्तुएं केवल भगवान का शरीर ही था और कुछ नहीं था, तो फिर वहीं से सारी वस्तुएं ब्रह्मा जी ने प्राप्त की। अनुवाद, जब मैं महापुरुष भगवान महाविष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुआ था तो मेरे पास यज्ञ अनुष्ठानों के लिए उन महापुरुष के शारीरिक अंगों के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ना थी। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे। तात्पर्य, श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी स्वयंभू कहे जाते हैं, जिसका अर्थ है जो माता पिता के बिना उत्पन्न हुए हैं। अभी यहाँ पर ब्रह्मा जी को जहाँ पर भी स्वयंभू लिखा हो ना, तो इसका मतलब ब्रह्मा जी की बात हो रही है जो कि स्वयं भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। उनका कोई माता पिता नहीं है, भगवान की नाभि कमल से ही उत्पन्न हुए हैं। सृष्टि का सामान्य नियम है कि माता तथा पिता के संसर्ग के फलस्वरूप ही जीव उत्पन्न होता है, किंतु प्रथम जन्मे हुए जीव ब्रह्मा भगवान विष्णु के पूर्ण अंश महाविष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न होते हैं। यदि नाभि कमल भगवान के शरीर का एक अंग है और ब्रह्मा जी इसी कमल से उत्पन्न होते हैं, अतएव ब्रह्मा जी भी भगवान के शरीर का के अंग हैं। प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड के विराट शून्य में अंधकार के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता। उन्हें बेचैनी हुई और उनके हृदय में भगवान ने उन्हें प्रेरित किया कि वे तपस्या करें, जिससे यज्ञ अनुष्ठान के लिए सामग्री प्राप्त हो सके। लेकिन इन दोनों अर्थात भगवान महाविष्णु तथा भगवान के अंग से जन्मे ब्रह्मा के अलावा वहां अन्य कुछ भी नहीं था। यज्ञ अनुष्ठानों के लिए अनेक सामग्रियों की, विशेष रूप से पशुओं की आवश्यकता थी। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी ने जिस तरह बताया कि मैं जन्म लिया और भगवान ने मुझे आज्ञा दी कि तुम तपस्या करो ताकि यज्ञ के लिए सामग्री उत्पन्न हो, लेकिन ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कि उस समय तो और कुछ नहीं था। और श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उस वैसे तो हर चीज़ जो है वो मतलब माता और पिता के संसर्ग से उत्पन्न होती है, लेकिन ब्रह्मा जी तो स्वयं वो हैं, वो तो भगवान से प्रकट हुए और उस समय भगवान ने उनको हृदय में ये प्रेरणा दी कि आप यज्ञ के लिए सामग्री इकट्ठा करो। लेकिन ब्रह्मा जी ने देखा कि सारी जगहों पे अंधकार ही अंधकार है, कुछ था नहीं, बेचैनी हो रही थी, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि मैं भगवान की है ना इच्छा को पूरा करूं। लेकिन वो क्या करते, क्योंकि भगवान महाविष्णु के और ब्रह्मा जी के अतिरिक्त वहाँ पर कुछ था नहीं, और यज्ञ करने के लिए तो बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता होती है, स्पेशली पशुओं की आवश्यकता होती है। अब पशुओं की आवश्यकता क्यों होती है, यज्ञ में पशु बलि दी जाती है, उसका क्या रिजल्ट होता है, उसके विषय में श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, पशु यज्ञ कभी भी पशु हत्या के निमित्त नहीं किया जाता। ये भूल जाइए कि पशुओं को मारने के लिए यज्ञ किया जाता है, अपितु यज्ञ को सफल बनाने के लिए किया जाता है। यद्यपि यज्ञ अग्नि में भेंट किया गया पशु नष्ट हो गया प्रतीत होता है, किंतु पट्टु पुरोहित द्वारा उच्चरित वैदिक मंत्रों से अगले ही क्षण उसे नवीन जीवन प्रदान कर दिया जाता। वास्तव में भक्तों, मंत्रों में बहुत शक्ति है। जो पट्टु ब्राह्मण होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं ना वैदिक मंत्रों के उच्चारण में, वो पशु को फौरन से एक नया और उच्च जन्म देने के उनके अंदर क्षमता होती है। और जैसे ही वो मंत्रों द्वारा उस पशु का की बलि देते हैं, उसी समय उनको एक नवीन जीवन प्रदान होता है। वो आध्यात्मिक जगत में हो सकता है या इस भौतिक जगत में भी कोई शुद्ध जन्म, जिसके द्वारा वो जल्द से जल्द भगवान को प्राप्त कर सके। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते, जब ऐसा पट्टु पुरोहित उपलब्ध नहीं होता है, तब यज्ञ की बलि वेदी में पशु यज्ञ करना वर्जित है। इस तरह ब्रह्मा ने यज्ञ की सामग्री भी गर्भोदक्षाय विष्णु के अंगों से ही तैयार की, जिसका अर्थ यह हुआ कि ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड की सृष्टि की। यद्यपि शून्य से कुछ उत्पन्न नहीं होता है, किंतु भगवान के शरीर से प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है। श्रीमद् भगवद गीता 10.8 में भगवान कहते हैं, अहम् सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। अर्थात प्रत्येक वस्तु मेरे शारीरिक अंगों से निर्मित है, मैं प्रत्येक वस्तु का प्रभु हूँ, प्रभु मन उत्पन्न करने वाला हूँ, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैं ही समस्त सृष्टि का मूल स्रोत हूँ, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर तरीके से बताएंगे कि भगवान के स्वरूप का स्वरूप कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, निर्विशेषवादियों का तर्क है कि जब प्रत्येक वस्तु साक्षात भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है तो भगवान की पूजा करने से क्या लाभ। जब सब कुछ भगवान ही है तो भगवान की पूजा करने का क्या लाभ। किंतु सगुणवादी बड़ी ही कृतज्ञता के भाव के साथ भगवान की पूजा भगवान के शारीरिक अंगों से उत्पन्न हुई सामग्री का उपयोग करते हुए करते हैं। हर एक वस्तु भगवान से ही उत्पन्न हुई है और उन्हीं वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाना यही शुद्ध भक्तों का कार्य है। फल तथा फूल पृथ्वी के शरीर से उत्पन्न प्राप्त होते हैं, फिर भी बुद्धिमान भक्त पृथ्वी से ही उत्पन्न हुई सामग्री से माता पृथ्वी की पूजा करते हैं। उसी प्रकार माता गंगा की पूजा गंगा जल से की जाती है, फिर भी पूजक को ऐसी पूजा का फल मिलता है। भगवान की पूजा भी भगवान के शारीरिक अंगों से उत्पन्न हुई सामग्री द्वारा की जाती है, तो भी पूजक को स्वयं भगवान का अंश है, भगवान की भक्ति का फल प्राप्त होता है। एक ओर जहाँ निर्विशेषवादी त्रुटिवश यह निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वह साक्षात भगवान है, वहीं सगुणवादी अत्यंत ही कृतज्ञता पूर्वक भक्ति भाव से भगवान की पूजा करता है और जानता रहता है कि भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं है। अतः भक्त प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक वस्तु तो भगवान की संपत्ति है। उसे कोई भी व्यक्ति उसे खुद की संपत्ति होने का दावा नहीं कर सकता। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी निर्विशेषवादियों और भगवान के भक्तों की भिन्नता के विषय में बता रहे हैं कि निर्विशेषवादी जो हैं वो ये सोचते हैं कि वो साक्षात भगवान है, संपूर्ण वस्तु भगवान से आई है, मैं भी भगवान से आया हूँ, मैं भी भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। लेकिन भक्त के अंदर कृतज्ञता का भाव होता है, भक्ति का भाव होता है, वो भगवान से प्रेम करता है, इसलिए उसके हृदय में एक ही इच्छा होती है कि मैं भगवान की सेवा करूं। फिर वो जानता भी है कि प्रत्येक वस्तु भगवान की ही है, भगवान की सामग्री है, भगवान की शक्ति है, तो उसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि प्रत्येक वस्तु तो भगवान की संपत्ति है ना। तो फिर कोई भी उस संपत्ति को अपनी संपत्ति होने का दावा नहीं कर सकता। यह एकात्म की पूर्ण धारणा पूजक को भगवान की प्रेम भक्ति में रत रहने में सहायक होती है। लेकिन निर्विशेषवादी झूठे ही गर्वित होकर सदा अभक्त बना रहना चाहते हैं और भगवान कभी उसे मान्यता प्रदान नहीं करते। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भले ही निर्विशेषवादी सोचते रहें कि मैं और भगवान एक ही हैं और वो भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते हैं, बल्कि भगवान में मिलकर एक बनना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि मैं भगवान का ध्यान करूँगा और मैं भगवान बन जाऊँगा। लेकिन भक्त जो होते हैं वो सदैव ये सोचते हैं कि मैं भगवान की सेवा करूँ, मैं भगवान से प्यार करूँ, मैं भगवान के लिए कुछ ऐसा करूँ कि मैं भगवान को प्रसन्न करूँ। तो भगवान भी उसी भक्त के प्रेम के आदान प्रदान से प्रसन्न होते हैं। इसे श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि निर्विशेषवादियों का जो झूठा गर्व है कि मैं भगवान बन जाऊंगा और अभक्त बना रहना चाहता है, भगवान उससे कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते। भगवान की भी इच्छा है कि उसके भक्त उसके साथ संबंध जोड़ें, उससे प्रेम करें। और भगवान ने स्वयं कहा है कि आपको मेरी भक्ति करनी है, मेरी पूजा करनी है, मुझे नमस्कार करना है
और मेरी शरण में आना है। तो यदि हम भगवान ही बन जाएंगे तो भला कैसे भगवान के इस आदेश का पालन करेंगे। इसलिए हमें सदैव कृतज्ञता का भाव रख के भगवान की शरण में रहना चाहिए।
आगे ब्रह्मा जी कहते हैं श्लोक नंबर 24 में, तीषु यज्ञस्य पशवः सवनस्पतयः कुशा इदं तदेव यजनं कालश्चोरुगुणान्वितः। तेषु यज्ञस्य पशवः सवनस्पतयः कुशा इदं च देव यजनं कालश्चारुगुणान्वितः। तेषु यज्ञस्य पशवः, तेषु मतलब ऐसे यज्ञों में, यज्ञस्य यज्ञ की संपन्नता का, पशवः यानी पशु या यज्ञ की सामग्री, स वनस्पतयः यानी फल फूल सहित, कुशा यानी कुश, इदं च देवयजनम, इदं मना ये सब, च मना भी, देवयजनम मतलब ये जो यज्ञ की वेदी है वो, और कालश्चारु गुणान्वित, काल मतलब उपयुक्त समय, च उरु मना अत्यधिक, गुण अन्वित मतलब योग्य। और क्या चाहिए? पहले तो बोला यज्ञ की सामग्री में पशु चाहिए, उसके बाद यज्ञोत्सवों को संपन्न करने के लिए फूल पत्ती कुश जैसे यज्ञ सामग्रियों के साथ साथ यज्ञ वेदी तथा उपयुक्त समय यानी वसंत की भी आवश्यकता होती है। अब ये सारी चीज़ें उस समय तो थी नहीं, क्योंकि उस समय तो क्रिएशन अभी तक कुछ हुआ नहीं था, खाली ब्रह्मा जी आए थे, तो ना ही पशु थे, ना वनस्पतियाँ थी, ना कुछ था, और ना ही यज्ञ वेदी थी, ना समय था, अभी तक समय भी नहीं बनाया था, बस सब कुछ स्टॉप था, तो वो सब चीज़ों की आवश्यकता थी। आगे ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ब्रह्मा जी श्लोक नंबर 25 में और भी वस्तुएं बता रहे हैं। वे कहते हैं, वस्तुन्योषधयः स्नेहा रसलोह मृदो जलम ऋचोयंजुषि सामानि चातुर्होत्रं च सत्तमम्। वस्तुन्योषधयः स्नेहा रसलोह मृदो जलम ऋचोयंजुषि सामानि चातुर्होत्रं च सत्तमम्। शब्दार्थ, वस्तुन योषधयः, वस्तुन मतलब पात्र, वस्तुनी जो जिसमें सामान रखेंगे वो पात्र चाहिए, औषधयः मतलब अन्न चाहिए, स्नेहा मतलब घी चाहिए, रसलोह मृदम, रस मतलब शहद, लोहा मतलब सोना, और मृद यानी मट्टी, जलम यानी जल चाहिए, ऋचा यानी ऋग्वेद, यंजुषी यजुर्वेद, सामानी यानी सामवेद, चातुर्होत्रम यानी यज्ञ संपन्न करने वाले चार व्यक्ति जो ब्राह्मण होते हैं वो, और च सत्तम, ये सब पवित्र वस्तुएं जो हैं वो चाहिए होंगी। तो अनुवाद देखिए, यज्ञ की अन्य आवश्यकताएं हैं पात्र, अन्न, घी, शहद, सोना, मट्टी, जल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा यज्ञ संपन्न करने वाले चार पुरोहित, वो सब चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि यज्ञ को विधिवत संपन्न करने के लिए कम से कम चार पटु पुरोहितों की आवश्यकता होती है, एक आहुति करने वाला यानी होता, एक उच्चारण करने वाला अर्थात उद्गाता, एक अग्नि को अन्य अग्नि की सहायता के बिना जलाने वाला अर्थात अध्वर्य, और तथा एक निरीक्षण करने वाला यानी ब्रह्मा। ऐसे यज्ञ प्रथम जीव ब्रह्मा के जन्म काल से ही होते आए हैं और महाराज युधिष्ठिर के शासन काल तक चलते रहे थे, किंतु आज के कलह तथा भ्रष्टाचार के युग में ऐसे पटु ब्राह्मण पुरोहित अत्यंत दुर्लभ हैं। अतएव इस युग में केवल भगवान के पवित्र नाम की
कीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई है। शास्त्रों का आदेश है हरेर्नाम 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 एव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। श्रील प्रभुपाद देखी, श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि इस भौतिक जगत में जब कलयुग आ जाता है तब ये सब यज्ञ विधि नहीं चलती। कलयुग का एक ही यज्ञ है, भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, और करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करने से जो लाभ मिलता है वो लाभ हरिनाम संकीर्तन के लाभ के समय हिस्से के बराबर भी नहीं है। इसी बुद्धिमान व्यक्ति इस कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन का यज्ञ ही करते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम में भी बताया है कि कलयुग में जो बुद्धिमान है यज्ञ संकीर्तन प्राय यजन्ति ही सुमेधसा, वो सिर्फ संकीर्तन यज्ञ का ही आंदोलन करेंगे, वो संकीर्तन यज्ञ करेंगे सुमेधसा, जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं इस कलयुग में तो ये ऐसे ऐसे पुरोहित मिलना भी बहुत दुर्लभ है और ये शुद्ध सामग्री प्राप्त करना भी दुर्लभ है। ये तो ब्रह्मा जी के जन्म काल की बात थी, जिस समय में आप रहते हो उस समय का प्रोसेस ही हमें करना चाहिए। और हमारे लिए तो सबसे सरल और सबसे उत्तम यज्ञ जो है वो है भगवान के पवित्र नाम का जप करना, यज्ञ करना, संकीर्तन यज्ञ करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं नामधेयानि मंत्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्पः संकल्पस्तंत्रमेव च नामधेयानि मंत्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्पः संकल्पस्तंत्रमेव च नामधेयानि। नामधेयानि मतलब देवताओं के नामों का आवाहन। जब यज्ञ में आहुति डालते हैं तो हम इदम इंद्राय स्वाहा इदम वरुणाय स्वाहा ऐसे नाम लेना होता है ना, तो अभी तक तो देवताओं का भी उत्पन्न नहीं हुआ था और नाम कैसे होंगे। आगे मंत्रा यानी देवता विशेष को अर्पित किए जाने वाले विशिष्ट मंत्र की आवश्यकता होती है। च दक्षिणा अर्थात पुरस्कार देने की, और च यानी तथा व्रतानी यानी व्रत, च तथा देवता अनुक्रम यानी एक एक करके सारे देवताओं की आवश्यकता होती है। कल्प विशिष्ट शास्त्र की जरूरत होती है। संकल्प विशिष्ट प्रयोजन की आवश्यकता होती है। तंत्रम अर्थात विशिष्ट विधि की जरूरत होती है। एवं वे जैसे हैं च भी। अनुवाद, यज्ञ की अन्य आवश्यकताओं में देवताओं का विभिन्न नामों से विशिष्ट मंत्रों तथा दक्षिणा के व्रतों द्वारा आवाहन सम्मिलित है। ये आवाहन विशिष्ट प्रयोजनों के साथ विशिष्ट विधियों द्वारा विशेष शास्त्र के अनुसार होने चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यज्ञ करने की पूरी विधि सकाम कर्म के अंतर्गत आती है और ऐसे कार्यकलाप अत्यंत वैज्ञानिक होते हैं। मतलब ऐसे ही अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, सारा जो प्रोसेस होता है वो सकाम होता है, उसमें गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। गलती हो गई ना तो समझो सारा यज्ञ बिगड़ जाएगा। जैसे जब विश्वरूप के पिताजी तुष्टा जब यज्ञ कर रहे थे वो सोच रहे थे कि ऐसा मुझे मतलब ऐसा वहाँ से यज्ञ से उत्पन्न हो ऐसा व्यक्ति जो कि इंद्र को मार डाले, लेकिन मंत्र को थोड़ा सा उन्होंने उच्चारण रॉन्ग कर दिया, फिर क्या हुआ, ऐसा व्यक्ति उत्पन्न हुआ जो कि जिसने इंद्र ने जिसको मार डाला। तो मंत्र के अंदर गलती की गुंजाइश नहीं होती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ये सारे कार्यकलाप अत्यंत ही वैज्ञानिक होते हैं। ये मुख्य रूप से विशिष्ट स्वर के आरोह अवरोह के साथ ध्वनि का उच्चारण करने की क्रिया पर निर्भर होते हैं। शब्द वही हो लेकिन यदि सिर्फ उसका स्वर उच्चारण जो है ना वो चेंज हो जाए ना, मतलब जो सेंटेंस लिखा वर्ड्स सही हो लेकिन उसका उच्चारण में भी थोड़ा सा अगर रॉन्ग हो जाता है ना, तो फिर परिक्रिया सारी वो खराब हो जाती है, सारा उसका रिजल्ट पॉजिट हो जाता है। यह एक महान विज्ञान है किंतु 4000 वर्षों से काम में ना लाए जाने तथा योग्य ब्राह्मण के अभाव के कारण ऐसे यज्ञ कृत्य अब प्रभावपूर्ण नहीं रह गए। अब तो ऐसे मंत्रास पढ़ने वाला कोई योग्य ब्राह्मण ही नहीं है और ना ही इतनी कोई शब्द आहुति है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं अब ये सब नहीं है, प्रभाव नहीं है, ना ही इस पतित काल में इनकी संस्तुति की जाती है। शास्त्र भी नहीं बोलता है कि आप बैठ के यज्ञ करो, अनुष्ठान करो। इस युग में प्रदर्शन के रूप में किया जाने वाला ऐसा यज्ञ चालक पुरोहितों द्वारा मात्र ठगी का कार्य है। बस अगर कोई बोलता भी है ना कि यज्ञ कर रहे हैं हम, तो वो बस एक दूसरे को ठगी करने के लिए कर रहे हैं। असल में ये योग यज्ञ करने का नहीं है, ना ही इस पतित काल में इनकी संस्तुति की जाती है। इस युग में प्रदर्शन के रूप में किया जाने वाला ऐसा यज्ञ चालक पुरोहितों द्वारा मात्र ठगी का कार्य है। अतएव यज्ञों का ऐसा दिखावा कभी भी स्तर पर प्रभावशाली नहीं हो सकता है। सकाम कर्म भौतिक विज्ञान द्वारा और कुछ हद तक स्थूल भौतिक सहायता द्वारा संपन्न किए जाते हैं, किंतु भौतिकतावादी लोग शब्दोच्चारण की विधि में सूक्ष्मतर प्रगति की प्रतीक्षा में हैं, जिस पर वैदिक मंत्रों की स्थापना हुई है। स्थूल भौतिक विज्ञान मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं बदल सकता। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं भले वो कितना भी भौतिक विज्ञान करके वो अच्छे से ना शब्दोच्चारण की क्रिया सीख लें, लेकिन जो मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य है वो थोड़ी बदलेगा। हाँ, वे जीवन की समस्याओं को हल किए बिना कृत्रिम आवश्यकताओं में वृद्धि अवश्य कर सकते हैं। वो क्या कर रहे हैं, समस्याएं जो रियल जीवन की हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक, ये सॉल्व नहीं हो रही हैं, लेकिन कृत्रिम आवश्यकताओं की वृद्धि यज्ञ से ये प्राप्त हो जाए। तो भौतिकतावादी जीवन शैली त्रुटिपूर्ण मानव सभ्यता की ओर ले जाती है। अगर हम मेटेरियल लाइफ जीते हैं कि हमें किस तरह से भौतिक जगत में आनंद करना है, तो वो त्रुटिपूर्ण मानव सभ्यता है। गलतियां करेंगे और कभी भी उद्देश्य को नहीं पूछेंगे। चूंकि जीवन का परम उद्देश्य आध्यात्मिक अनुभूति है, परम उद्देश्य को नहीं भूलना है, लेकिन केवल सकाम कर्म कांड में लगे होंगे और भौतिक आवश्यकताओं की वृद्धि होती जाएगी, तो आध्यात्मिक अनुभूति का कब समय मिलेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं चूंकि जीवन का परम उद्देश्य आध्यात्मिक अनुभूति है, अतएव जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भगवान के पवित्र नाम के आवाहन की प्रत्यक्ष विधि की भगवान चैतन्य ने संस्तुति की है। आधुनिक युग के लोग इस सरल विधि का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि यह जटिल सामाजिक संरचना की परिस्थिति में अपनाए जाने योग्य है। ये जो आज समस्या है, आज की जो सामाजिक संरचना है, आज जो समाज में इतना जटिलता है, इतना कला है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कलयुग में महामंत्र ही कारगर है। केवल महामंत्र का जप ही जीवों का कल्याण कर सकता है और कोई मुश्किल कार्य करने की जरूरत नहीं है। साधारण एकदम सरल है ये महामंत्र, बहुत ही पावर वाला है, लेकिन इसके लिए नियमित स्मरण न काला, कोई नियम नहीं है, कोई विधि विधान नहीं है, कोई उच्चारण आप कैसे भी कर सकते हो, लंबा भी कर सकते हो, सिंपल भी कर सकते हो, साधारण भी कर सकते हो। इस मंत्र के उच्चारण में कोई त्रुटि नहीं है, इस मंत्र के लिए कोई और विशेष अनुष्ठान नहीं करना पड़ता। नियमित कोई समय का भी प्रभाव नहीं है। बाकी यज्ञों के जो मंत्र होते हैं ना, समय पर ही प्रभावित होते हैं, लेकिन इस महामंत्र में भगवान ने बहुत सरल कर लिया है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं आज के युग के लोगों को इससे लाभ लेना चाहिए। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी श्लोक नंबर 27 में कहते हैं, गतयो मतयश्चैव प्रायश्चित्तं समर्पणं पुरुषा वयवैरेति संभारा संभृतामया गतयो मतयश्चैव प्रायश्चित्तं समर्पणं पुरुषा वयवैरेति संभारा संभृतामया। गतय अर्थात चरम लक्ष्य विष्णु की प्राप्ति, जो गति है हमारी वो मतयश्चैव, मतय मतलब देवताओं की पूजा, च एव निश्चय ही, प्रायश्चितम अर्थात पाश्चाताप, समर्पणम अर्थात अंतिम रूप से भेंट, और पुरुष यानी भगवान, अवयवय यानी भगवान के शरीर अंगों से, अते ये संभारा यानी अवश्य सामग्री संभ्रता आयोजित मया मेरे द्वारा, यानी कि फिर मैंने क्या किया, सारी जो सामग्री थी वो सब भगवान के अंगों के द्वारा ही प्राप्त की। अनुवाद देखिए, ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार मुझे भगवान के शारीरिक अंगों से ही यज्ञ के लिए इन आवश्यक सामग्रियों की तथा साज सामान की आवश्यकता व्यवस्था करनी पड़ी। देवताओं के नामों के आवाहन से चरम लक्ष्य विष्णु की क्रमशः प्राप्ति हुई और इस प्रकार प्रायश्चित तथा पूर्ण आहुति पूरी हुई। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक में समस्त सामग्रियों के स्रोत के रूप में भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप पर अधिक बल दिया गया है। कहाँ से आया है, पुरुषा वयवायतेर, भगवान के शरीर से, भगवान के शरीर के अंगों की बात हुई है। अगर भगवान निराकार होते तो यहाँ पर ये तो अवयव अवयवय यानी भगवान के शारीरिक अंग, जो पुरुष अवय, भगवान के अंगों की बात क्यों होती, यदि भगवान के अंग होते ही नहीं भगवान निराकार होते। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते इस श्लोक में समस्त सामग्रियों के स्रोत के रूप में भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप पर अधिक बल दिया गया है, ना कि निर्विशेष ब्रह्म ज्योति पर। परम भगवान नारायण समस्त यज्ञ फलों के लक्ष्य हैं, अतएव वैदिक मंत्र अंततोगत्वा इसी उद्देश्य के की प्रति के प्राप्ति के लिए होते हैं। किस उद्देश्य के, भगवत प्राप्ति। जो भी आप कर रहे हो आध्यात्मिक जीवन में या वर्णाश्रम जीवन में, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि भगवत प्राप्ति हो, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो। यदि जीवों के हृदय में कोई भी कार्य करने के बाद भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न नहीं होता, भगवान के चरणों की ओर आकर्षण उत्पन्न नहीं होता, तो वो सब श्रम है, केवल श्रम, लेबर मात्र है, कुछ लाभ नहीं हुआ जीवन का। मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया, उसके लिए आप पहले कितने ही सोशल वर्क करो, कितने ही यज्ञ करो, तपस्याएं करो, कितना ही कुछ कर लो, लेकिन यदि भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं होता है तो सब का सब फिजूल है। इसी श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं अतः वैदिक मंत्र अंततोगत्वा इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होते हैं। इस तरह नारायण को प्रसन्न करके तथा वैकुंठ धाम के आध्यात्मिक साम्राज्य में नारायण के प्रत्यक्ष सानिध्य में प्रविष्ट होकर मनुष्य जीवन को सफल बनाया जा सकता है। यही सक्सेस है। इस संसार में चाहे कुछ भी प्राप्त कर लो, जितना ही धन हो, जितनी ही सुंदरता हो, ऐश्वर्य हो, जो कुछ भी यहाँ पर होगा वो सब का सब छोड़ के जाना है, और जब दोबारा से आएंगे तब उसमें से कुछ भी हमारा नहीं रहेगा।
इसलिए बुद्धिमान वही है जो इस मनुष्य जीवन का लाभ ले कि मुझे कैसे भी करके इस भौतिक जगत की कैद से बाहर निकलकर आध्यात्मिक जगत की ओर जाना है, और उसके लिए हृदय से सिंसियर होना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा और भगवान से ये प्रार्थना करनी पड़ेगी कि भगवान अब हम पर कृपा कीजिए कि हम भौतिक आकर्षण को ख़त्म करके आपके चरणों की ओर आकर्षित को निर्माण कर सकें, क्योंकि यदि ये ना हुआ तो इस बार भी हमारा ये जीवन सफल नहीं हो सकेगा। क्योंकि साफ साफ बताया श्रीला प्रभुपाद जी ने कि इस तरह नारायण को प्रसन्न करके तथा वैकुंठ धाम के आध्यात्मिक साम्राज्य में नारायण के प्रत्येक सानिध्य में प्रविष्ट होकर ही मनुष्य जीवन सफल बनाया जा सकता है, और अगर इस बार चूक गए तो ना जाने फिर कब मौका मिलेगा। इसलिए आप सब मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्णा।